पिछले अध्याय में आपने देखा कि आर्यन बीमार हो जाता है और सानवी उसकी देखभाल करती है। रिया शिव मेहता के साथ लिफ्ट में फंस जाती है और जेसिका आर्यन और सानवी को अलग करने की योजना बनाती है। इस अध्याय में आर्यन और सानवी एक साथ समय बिताते हैं। आर्यन को लिफाफा मिलता है लेकिन वो उसे खोल नहीं पाता क्योंकि वो बीमार हो जाता है। सानवी को कृति का फोन आता है जो उसे बताती है कि लिफाफे में आर्यन के खिलाफ सबूत है। सानवी घबरा जाती है और हाथ काट लेती है। अब आगे, तुम तो बहुत परेशान लग रही थी, इतना क्यों? आर्यन ने पूछा। बस वो ग्लास टूट गया, आगे से ध्यान रखूंगी, अब नहीं होगा, वो थोड़े घबराते हुए बोली। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या हुआ, तोड़ देना। फिर उसने दवाई लगाते हुए उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में कुछ आंसू थे। आर्यन ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर आंखों से आंसू पोंछ दिए। सानवी के लिए ये पल इतना भावुक था कि वो खुद भी मुस्कुराने लगी। मैं तैयार होने जा रहा हूँ, अब मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ, मुझे ऑफिस जाना चाहिए। आर्यन किचन से बाहर जाने लगा। आर्यन जैसे ही किचन से बाहर निकलने लगा तभी अचानक पलटा। वो जो सारे एनवेलप्स पड़े हैं ना, उन्हें ड्रॉअर में रख देना, उसने सानवी से कहा। सानवी ने सिर हिलाकर हामी भरी और बाकी सभी लिफाफे धीरे धीरे उठा लिए। पर जब उसने वो लिफाफा खोला जिसमें वो पेन ड्राइव थी, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने चारों तरफ देखा, फिर पेन ड्राइव निकालकर अपने हाथ में दबा ली। उसकी आंखों में ग्लानी झलक रही थी। माफ करना आर्यन, उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर मैं अपनी बहन को फंसते हुए नहीं देख सकती। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पेन ड्राइव छिपाई और बाकी एनवेलप सावधानी से ड्रॉअर में रख दिए। सानवी को पता था कि ये कदम उसकी जिंदगी बदल सकता है या शायद सब कुछ खत्म भी कर सकता है। दूसरी ओर उसी वक्त जेसिका ऑफिस के मीटिंग रूम में बैठी थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी और हाथ में कॉफी का कप, जैसे उसे किसी बड़ी खबर का इंतजार हो। बस अब थोड़ी देर और, उसने मन ही मन कहा, जब आर्यन को ये पता चलेगा कि वो डॉक्यूमेंट सानवी और कृति ने लीक किए तो खेल खत्म। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक लड़की अंदर आई। मैम, ये वही फाइल है जो आपने मांगी थी, लड़की ने कहा। जेसिका ने बिना ऊपर देखे जवाब दिया, बहुत बढ़िया, आज का दिन बहुत अच्छा लग रहा है ना? लड़की ने मुस्कुरा कर कहा, जी मैम, और बाहर चली गई। जेसिका ने फाइल खोली ही थी कि पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, मेरे लिए भी एक ब्लैक कॉफी बिना शुगर। वो पलटी, सामने विक्रांत खड़ा था। विक्रांत, तुम्हारी तो आज किसी मीटिंग में होना चाहिए था ना, जेसिका ने हैरानी से पूछा। विक्रांत हंसा, कुर्सी खींचकर उसके पास बैठ गया। हाँ थी तो मीटिंग, पर तुम्हारे बिना वहां मन नहीं लगा। ओ, तो अब तुम्हें मेरे ऑफिस में आकर मेरी मीटिंग्स डिस्टर्ब करनी है, जेसिका ने मुस्कुराकर कहा। विक्रांत ने झुककर उसकी आंखों में देखा। जेसिका हल्के से मुस्कुराई, मगर मन में कुछ और चल रहा था। उसे पता था कि आर्यन और सानवी की जिंदगी का एक और बड़ा मोड़ आने वाला है और इस बार वो खुद कहानी की डोर अपने हाथ में रखेगी। जेसिका अपने फोन को मेज पर रखते हुए बोली, बाजार आई थी, सोचा ऑफिस भी हो लूं, कहीं ऐसा ना हो कि लोग हमें भूल जाएं कि जय हमारे पास है। वो हल्की मुस्कान के साथ अपनी फाइलों को पलटती है, और वैसे भी जल्दी ही हम इस ऑफिस में परमानेंट आने वाले हैं, सामने बैठे विक्रांत ने कहा। तुम सही कह रही हो, जेसिका ने ठंडी सांस ली। बस अब कुछ ही दिन और, तारीख पास आ रही है, जैसे ही जय की परमानेंट कस्टडी हमारे पास आएगी तब असली हुकूमत हमारी होगी। फिर देखना आर्यन राजवंश का चेहरा जब उसे समझ आएगा कि उसने सब कुछ खो दिया, विक्रांत बोला। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी, जैसे जीत की गंध पहले ही महसूस कर रही हो। उसी वक्त सानवी किचन में बेचैन होकर इधर उधर टहल रही थी। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया और कृति को कॉल लगाया। कृति, उसकी आवाज थरथरा रही थी, तुम्हारी वजह से मैं कितनी परेशान हूँ तुम्हें अंदाजा भी है? कृति के लहजे में लापरवाही थी। दीदी, काम तो हो गया ना, तो अब परेशान होने की क्या बात है, सब हमारे काबू में है। सानवी ने गहरी सांस ली। काबू में? कृति, सोचो जरा, अगर वो पेनड्राइव आर्यन ने देख ली होती तो तब क्या होता? कृति हल्के से हंसी। इतना मैं भी समझती हूँ दीदी, इसीलिए तो मैंने आपको कॉल किया था। सब ठीक है, कोई कुछ नहीं जान पाएगा। सानवी ने आंखें बंद की। जय अगर आज इस घर में नहीं है तो उसकी वजह सिर्फ तुम हो कृति, याद रखो, अगर किसी को ये सच्चाई पता चल गई तो। कृति बीच में बोली, पता नहीं चलेगा दीदी, पक्का नहीं चलेगा, मैं जेसिका से बात कर लूंगी, मैं सब संभाल लूंगी। सानवी की आंखों में डर साफ छलक रहा था, मगर कृति की आवाज में अब भी वही बेपरवाही थी, जैसे उसे आने वाले तूफान का जरा भी एहसास नहीं था। कृति अंदर आती है। मीटिंग रूम में जेसिका और विक्रांत कॉफी पी रहे थे। विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो कौन आया है, तुम्हारी प्यारी जासूस। जेसिका हल्के व्यंग से बोली, कभी हुआ करती थी मेरी जासूस। कृति ने चेहरे पर झूठी मुस्कान रखी। कुछ बातें करनी थी आपसे मैडम, जेसिका ने उसकी तरफ देखा। उसकी नजरों में शक और गुस्सा दोनों थे। उसे लगा कि आर्यन को पेनड्राइव के बारे में कुछ पता चल गया है। उसी वक्त विक्रांत का फोन बजता है। वो उठता है, मैं बाद में आता हूँ कहकर फोन लेकर बाहर चला जाता है। अब कमरे में सिर्फ जेसिका और कृति रह गई। हवा में सन्नाटा था, सिर्फ कॉफी कप की हल्की आवाज। कृति ने टेबल पर झुकते हुए कहा, जो सामान आपने भेजा था आर्यन के घर, मेरी बहन ने उसे ठिकाने लगा दिया है। अब हर चीज मेरे कंट्रोल में है। वैसे शुक्रिया, अगर आप ना बताती तो शायद मामला बिगड़ जाता। जेसिका ने हल्की मुस्कान के साथ फोन उठाया। तो ठीक है, मैं खुद ही आर्यन को कॉल कर देती हूँ, उसे बता दूँ कि किसने क्या ठिकाने लगाया। कृति ने झटके से उसका हाथ पकड़ लिया, फोन नीचे गिरते गिरते रुका। अगर तुम्हारी जगह मैं होती, उसने ठंडी आवाज में कहा, तो ऐसा कभी नहीं करती। तुम मेरी बहन को बर्बाद करने की कोशिश कर रही हो, सिर्फ इसलिए कि तुम उससे जलती हो। सही कहा ना मैंने, तुम्हें अब भी आर्यन के ख्वाब सताते हैं। जेसिका की आंखों में गुस्सा भर गया। चुप रहो, तुम्हें नहीं पता तुम किससे बात कर रही हो, कृति ने ठंडे अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। क्यों, जब बात तुम्हारे ऊपर आती है तो गुस्सा आ जाता है? कभी सोचा दूसरों के साथ क्या करती हो तुम? जेसिका चीख पड़ी, तुम चुड़ैल हो, कृति ने हंसते हुए कहा। गलत मत समझो, चुड़ैलें डरती नहीं, और मैं अब किसी से नहीं डरती। कमरे का माहौल एकदम भारी हो गया था। जेसिका का चेहरा गुस्से से लाल था और कृति की आंखों में एक खतरनाक सुकून था, जैसे उसने पहली बार जेसिका को उसकी ही चाल में फंसा दिया हो। जेसिका गुस्से में ऐसा फैसला मत लो कि खुद ही बर्बाद हो जाओ। कृति ठंडी आवाज में, शायद तुम्हें यही लग रहा है कि मैं खुद को बर्बाद कर रही हूँ, पर कभी कभी बर्बादी ही लोगों को बचा लेती है। जेसिका थोड़ा रुकी, फिर बोली, तुम चाहती क्या हो? हम दोनों एक दूसरे के सच को छुपाए रखें। मैं अपनी बहन को अब और परेशान नहीं कर सकती। कमरे में भारी सन्नाटा फैलता है, तभी दरवाजा खुलता है। विक्रांत अंदर आता है। वकील का फोन था, कह रहा था अगली तारीख पर सब ठीक हो जाएगा। फिर दोनों की तरफ देखता है, लेकिन तुम दोनों के चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? कोई मसला है क्या? जेसिका जल्दी से, नहीं मसला तो कोई नहीं है, हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो कृति की तरफ मुड़ी, है ना कृति? कृति ने हल्की सी मुस्कान दी, झूठी लेकिन आत्मविश्वास भरी। बिल्कुल सब कुछ ठीक है। वो उठी और बाहर निकल गई। जेसिका ने थोड़ा हंसते हुए कहा, कृति बता रही थी वो यहाँ इंटर्नशिप कर रही है, काफी समझदार लगती है, हमारे लिए तो मददगार साबित होगी।